ग्रंथ संता विलास में एक चैप्टर है निर्मल जीवन रक्षा, इसका वचन नंबर 9 और 11 में आप सामने पढ़ रहा हूं, इस पर विचार होगा। वचन नंबर 9, सार निर्णय यह है कि वासना का अधिक बढ़ाना असली परम दुख है। सार निर्णय यह है कि वासना का अधिक बढ़ाना असली परम दुख है और वासना से निवृत्त होना ही असली शांति और धर्म है। निर्वास स्वरूप केवल एक आत्मा है और तमाम संसार वासना का ही जान है। ऐसा निर्णय विचार करके अपने जीवन के जो सही रक्षक बनना चाहते हैं वे इस वासना की निवृत्ति का यत्न करें और आत्मपरायणता में दृढ़ता धारण करें। यह ही निश्चय असली कल्याण के देने वाला है। एक बार फिर सुने इस वचन को। सार निर्णय यह है कि वासना का अधिक बढ़ाना असली परम दुख है और वासना से निवृत्त होना ही असली शांति और धर्म है। निर्वास स्वरूप केवल एक आत्मा है और तमाम संसार वासना का ही जाल है। ऐसा निर्णय विचार करके अपने जीवन के जो सही रक्षक बनना चाहते हैं वे इस वासना की निवृत्ति का यत्न करें और आत्मपरायणता में दृढ़ता धारण करें। यह ही निश्चय असली कल्याण के देने वाला है। तो ये जो कुछ करने को सब कुछ हमसे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा निर्णय विचार करके अपने जीवन के जो सही रक्षक बनना चाहते हैं वे इस वासना की निवृत्ति का यत्न करें और आत्मप्राणता में दृढ़ता धारण करें। ये मेरा ये जीवन है क्या? किस जीवन के की रक्षा की बात कर रहे हैं? अपने जीवन के जो सही रक्षक बनना चाहते हैं। तो मैं तो एक ही चीज समझता हूं, जो ये शरीर मुझको दिखाई पड़ रहा है, अन्य लोगों को दिखाई पड़ रहा है, यही जीवन है, इसी की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि यही बात सही है तो मैं जरा विचार करके तो देखूं कि इस शरीर के द्वारा जब मुझको सुख मिलता है, इसी शरीर के द्वारा जब मुझको दुख मिलता है, तब मेरे कहने का जो ढंग है, जिन शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं इस बात को कहने के लिए, उसमें ही मेरे ज्ञान का राज छिपा हुआ है। क्योंकि मैं शास्त्र की बात पर मनन नहीं करता, उसको केवल एक लैंग्वेज की तरह पढ़ लेता हूं और बुद्धि जब उसकी मीनिंग समझ लेती है तब मैं समझ लेता हूं कि मैं समझ गया। शास्त्र का पढ़ना इतना सरल नहीं होता, क्योंकि शब्द सरल हो भी उसके अंदर की जो बात है, उसके अंदर का जो ज्ञान है, वो बहुत ही सूक्ष्म होता है। इसलिए 50 साल समता विलास पढ़ने के बाद भी आप ये नहीं कह सकते कि मैंने समता विलास समझा। ये डिपेंड करेगा कि आपकी बुद्धि का कितना विकास हुआ और उसको आपने अपने अमल में कितना लाया, तभी आपको पता लगेगा कि सारी जिंदगी शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं। वो भी कब? जबकि मेरा लगातार विकास हो रहा है, तब की बात। और विकास ही नहीं हो रहा है तब तो रटे जाओ, शास्त्र क्या फर्क पड़ता है? 2 पन्ने रोज पढ़ लो, मैं रोज पाठ कर लेता हूं, आप वैसे के वैसे कोरे के कोरे रहोगे। तो यहां जो सब कुछ बात करें, क्योंकि टाइटल ही है निर्मल जीवन रक्षा, कौन सी निर्मल चीज है और किसकी रक्षा करनी है मैंने, यही बात तो सीखनी है। तो यहां वो इस भेद को खोल रहे हैं कि ऐसा निर्णय विचार करके अपने जीवन के जो सही रक्षक बनना चाहते हैं वे इस वासना की निवृत्ति का यत्न करें और आत्मप्रायता में दृढ़ता धारण करें। तो सादी सी बात है, सिंपल सी बात समझने के लिए कि इस शरीर के द्वारा जो भी मैं क्रिया करता हूं, कोई वस्तु का मैं जीभ के द्वारा चखता हूं, कोई आंख से देखता हूं, कोई कान से सुनता हूं, कोई स्पर्श करता हूं, तो जितनी भी मेरी ज्ञान इंद्रियों की ये क्रियाएं हैं, इनके सेंसेशंस हैं, जो बुद्धि अनुभव करती है, यानी मैं अनुभव करता हूं, तो मैं इस देह से एक अलग चीज हूं जिसमें जीवन है, जिसमें जान है, जिसमें कॉन्शियसनेस है। मुझको पता है कि मेरे अंदर चेतना है, मैं जानता हूं। मुझको यह भी पता है शरीर के द्वारा जो क्रिया करता हूं संसार में, उसके द्वारा मुझे सुख मिलता है या दुख मिलता है, शांति मिलती है या बेचैनी मिलती है। तो शरीर क्रिया करने का इक्विपमेंट है, क्योंकि कभी मैंने विचार ही नहीं किया शास्त्रों पर, इसलिए पूरा जन्म मेरा बीत जाता है, मैं कंफ्यूज रहता हूं और देह के ऊपर मेरी कोई सोच ही नहीं होती। तो यहां आपको सत्पुरुष सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, सिखा रहे हैं आप, तू है कौन और समझता क्या रहा है अपने आप। तो शरीर सुख भोगने का, दुख भोगने का इंस्ट्रूमेंट है, साधन है, किसके लिए, मेरे लिए। देह कुछ भी नहीं जानती मेरे बारे में, मैं देह के बारे में जानता हूं। तो जो जानने वाला है वही सुखी होगा, वही दुखी होगा, वही शांत होगा, वही अशांत होगा। तो सत्पुरुष देह छोड़कर मुझे अपने बारे में सोचने की बात कह रहे हैं। तो मेरे अंदर जीवन है, जीवन क्यों है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं जिंदा हूं, और मैं ही जो कुछ भी क्रिया शरीर के द्वारा होती है उसके द्वारा सुख महसूस करता हूं, दुख महसूस करता हूं, चैन महसूस करता हूं या बेचैनी महसूस करता हूं। तो सत्पुरुष देह का इलाज करेंगे या मेरा इलाज करेंगे, जो परेशान हो रहा है सत्पुरुष उसका इलाज करने की बात कर रहे हैं। यदि शरीर का ही इलाज करना है तो डॉक्टर है चले जाओ उसके पास, तो गुरु की क्या जरूरत है, शास्त्र की क्या जरूरत है। मैं इतना बुद्धिमान हूं, मैंने PhD कर रखी होगी, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली होंगी, बड़े बड़े मेरे प्रोफेशन होंगे, लेकिन अपने बारे में मैंने ABCD का भी ज्ञान नहीं सीखा। पूरा जन्म बीत जाता है, पूरे समाज में कोई समझाने वाला नहीं, कहीं भाग से किसी पूर्व गुरु पर विश्वास आता है और शास्त्र पर विश्वास आता है, कभी उनके पास बैठता हूं या उसका स्वाध्याय करता हूं, तब मेरे अंदर इस बात की सोच शुरू होती है। तो जीवन रक्षा किसकी बात कर रही है संत विलास? जीवन, जिसमें जीवन है उसकी रक्षा की बात कर रही है, ना कि शरीर की रक्षा की बात। शरीर की रक्षा की बात उन्होंने बड़ी स्पष्ट कर दी कि शरीर चाहे सत्पुरुष का है चाहे मेरा है, शरीर सत्ता तारत्व के अधीन है। जिस दिन शरीर का जन्म होता है इससे क्या होना है क्या नहीं होना है, क्या शारीरिक क्रिया होनी है नहीं होनी है, कब मरना है, सब कुछ डिसाइड हो चुका होगा। इसमें मैं लेश मात्र भी कोई बदल नहीं कर सकता, नहीं तो सत्पुरुष के पास तो असीम पावर्स होती है। जगदगुरु शंकराचार्य 32 साल के एज में चले गए, विवेकानंद 40 के एज में चले गए, महाराज जी 50 के एज में चले गए, रामकृष्ण परमहंस 50 के एज में चले गए, सारी सामर्थ्य उनके अंदर, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शरीर करके वो भी पराधीन है, क्योंकि उनको भी पता है कि शरीर प्रारब्धाधीन है, जो कुछ भी शरीर से क्रिया होनी है वो प्रारब्ध है और प्रारब्ध पूरा होते ही शरीर ये खत्म हो जाएगा। तो शांति की जब बात करते हैं वो शरीर की शांति की बात नहीं करते हैं, वो मेरी शांति की बात करते हैं। मेरा नाम जीव है जिसमें जीवन है, मेरा नाम बुद्धि है जो जानती है, जो निर्णय करती है, जो निश्चय करती है। शरीर में ऐसी दूसरी कोई भी चीज नहीं जो निश्चय करता हूं, जो जानता हूं। तो इसीलिए मैं ही बंधन में हूं क्योंकि मैं जानता हूं। जब मुक्ति की बात कर रहे हैं तो मेरी ही अर्थात बुद्धि की मुक्ति की बात कर रहे हैं या जीव की मुक्ति की बात कर रहे हैं जिसमें चेतना है। तो मैं किस कारण से बेचैन हो रहा हूं? यदि मैंने पहले अपने आप के बारे में सोच लिया तभी तो मुझे पता लगेगा कि मैंने करना क्या है। तो इसीलिए सारा जो भी ज्ञान है वो शरीर के इलाज के लिए शास्त्रों में नहीं, वो जीव के इलाज के लिए है जो शरीर के द्वारा सुखी होता है दुखी होता है, चिंतित होता है या शांत होता है। तो इन दो चीजों को यदि मैंने अलग करके नहीं जाना तो संसार का सारा अध्यात्म ही क्यों ना पढ़ लूं, मैंने गलत ही पढ़ा होगा, गलत ही समझा होगा। इसलिए बेसिक एनालिसिस, बेसिक क्वालिफिकेशन जरूरी है शास्त्र पढ़ने के लिए, गुरु की बात समझने के लिए, यहां तक कि गुरु को भी समझने के लिए। यदि गुरु शरीर होता तो महर्षि रमण ये बात क्यों कहते कि गुरु केवल एक है और वो परमेश्वर है। जिस गुरु पर श्रद्धा रखकर हम आगे बढ़ते हैं संसार में शांति प्राप्ति के लिए, वो गुरु कह क्या रहा है? कभी ध्यान दिया इस बात के लिए? वो कहे गुरु केवल एक है और वो परमेश्वर। लेकिन वो परमेश्वर जिस शरीर से कार्य कर रहा है उस शरीर के नाम रूप अलग अलग अलग। तो मैं गुरु की बात में कभी ध्यान ही नहीं देता। महाराज जी संतरदास में लिख रहे हैं, वास्तव में गुरु शब्द रूप परमेश्वर है जो घट घट व्यापक है। लेकिन क्या मैंने महाराज जी की बात पे ध्यान दिया कभी? मेरा केवल ध्यान उनके शरीर पर। क्यों शरीर पर है? क्योंकि मैं अपने आप को शरीर समझ रहा हूं, गुरु को भी शरीर समझता हूं, यह स्वाभाविक बात है, इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन मैंने यदि आगे बढ़ना है तो बुद्धि का निर्णय ठीक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या सारी जिंदगी में मूर्ख का मूर्ख बना रहूंगा, जगह जगह माथे ही टेकते रहूंगा? मेरा कल्याण तभी संभव है जब मैंने सत्पुरुषों के ज्ञान को गहराई से सही सीखने की कोशिश की, तभी मेरा कल्याण संभव। इसीलिए किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति का संग पकड़ना पड़ता है संसार में जो इस मार्ग पर चला हो, जो इन बातों को समझता हो। ये तो आप तो कौन समझाएगा, खुद पढ़ भी लोगे तो कुछ का कुछ समझते रहो, क्योंकि बुद्धि का जो निश्चय है वो डिफेक्टिव है, इसलिए आपके सारी पढ़ाई लिखाई गलत हो जाए। तो कहीं ना कहीं मार्गदर्शन चाहिए। इसीलिए आपको सही व्यक्ति नहीं भी मिलता कोई बात नहीं, संगति मिल जाए। संगत में भी ऐसे मौके आते हैं जब सही बात समझने का मौका मिलता है, जैसे कि आज इस समय मिल रहा है। पूरे समाज में आपका कौन रिश्तेदार आपको यह समझाता कि तू देह नहीं है, तू जीव है, तू बुद्धि है, जो सुखी होता है दुखी होता है, जो चिंतित होता है जो शांत होता है, वो तो है। इसीलिए मेरी मृत्यु नहीं होती। जब मैं देह हो ही नहीं, देह सड़ जाती है, मर जाती है। देह तो मेटीरियल है, साथ साथ लिखा है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये चार पांचों तो मेटीरियल जिनसे पृथ्वी बनी है, सारा संसार बना है, मेरी देह भी बनी है। तो जिस मिट्टी से, जिस पत्थर से, जिस सीमेंट से मकान बनता है वो तो धरती है ना। जैसे बाहर की बिल्डिंग है ऐसे मेरा शरीर भी एक बिल्डिंग है। मैं रहने वाला चेतन हूं, मैं रहने वाला जीवित हूं, मैं इसमें रहने वाला अशांत हूं। तो इसीलिए सत्पुरुष जब निर्मल जीवन रक्षा का विज्ञान लिख रहे हैं तो उनकी बात तो समझ लिया, वो किसके लिए लिख रहे हैं? वो मेरे लिए लिख रहे हैं, मेरे शरीर के लिए नहीं लिख रहे हैं। मेरे लिए क्यों लिख रहे हैं? कि उनको पता है कि इसकी मृत्यु तो होगी नहीं और शरीर इसका बदल जाएगा, जिसको पुनर्जन्म कहते थे। बात इतनी सी है। सारी जिंदगी मौत से कितना घबराता, जो चीज जो घटना मेरे जीवन में घटनी ही नहीं है, सारी जिंदगी भयभीत रहता हूं। अब बताइए, ये ज्ञान यदि आप सीख लें तो ये अमृत है नहीं है? अमृत उसे कहते हैं जो आपको मौत से हमेशा बचाया जाता है, जो आपको मरने ही नहीं देता। इसलिए ज्ञान ही अमृत है। ये मेरी बुद्धि की खुराक है, डॉक्टरी की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, एमबीए की पढ़ाई, ये मेरी खुराक नहीं है। इससे तो केवल रोजी रोटी चलती है, शरीर का गुजारा मात्र चलता है, मैं इसमें पूरी जिंदगी खपा देता हूं। इसीलिए यदि मैंने शास्त्र सही रूप से नहीं सीखा तो याद रखिए, मनुष्य होने के बाद भी मैं केवल मूर्ख हूं, मेरे पास कोई बुद्धि नहीं। जब बुद्धि की एबीसीडी मैं जानता ही नहीं तो काहे का बुद्धिमान। इसीलिए आप बड़े इंसान बन भी गए तो इतने पाप करोगे कि 10 जन्म भी उनको भोगते वो कटेंगे नहीं आपके। इस बुद्धि का दुरुपयोग भी इतना बड़ा है इस मनुष्य जन्म को लेकर। इसीलिए मनुष्य जन्म बहुत ही खतरनाक भी है, बहुत ही बढ़िया भी है। खतरनाक इसलिए कि पाप इसी जन्म में मनुष्य कर सकता है, पशु योनि में पाप नहीं होते। एक शेर सारी जिंदगी जीवों को मार के खाता रहे उसको इतना सा भी पाप नहीं लगता, क्योंकि वो भोग योनि है, कर्म योनि नहीं है, मनुष्य की कर्म योनि है। इसको बुद्धि दी गई है, बुद्धि के वास्ते इसको गुरु भी दिया गया है, इसको शास्त्र भी दिए गए, इसको संगत भी दी गई है। इतनी चीजें ईश्वर ने मुझको दिए हैं मेरे विकास के लिए, मुझको समझदार बनाने के लिए, और मैं संसार के निकल करके मूर्ख का मूर्ख। और गुरु की क्या जरूरत समझता हूं, मेरे जीवन में कोई दुख आएगा तो गुरु मेरा शारीरिक जीवन जो दुख आएगा उसको दूर कर देंगे, यहां मेरी अक्ल काम कर रही। तो आप बताइए कितना बुद्धिमान समझता हूं अपने आप को, गुरु भक्त कहता हूं अपने आप को, महाराज जी मेरे गुरु हैं। लेकिन मन में क्या चल रहा है, बुद्धि में क्या निर्णय है कि महाराज जी मेरी इच्छा पूरी कर देंगे, महाराज जी मेरी शारीरिक मुसीबतें हल कर देंगे, यहां मेरी बुद्धि काम करती है। तो इसलिए ये वचन आपको याद दिला रहा है कि सार निर्णय ये है कि वासना का अधिक बढ़ाना असली परम दुख है। दुख के पीछे क्या एडजेक्टिव यूज किया गया है कि असली परम दुख है। अब बताइए इस दुख में डुबोने के लिए मैं बच्चों का विकास कर रहा हूं, मैंने अपना विकास किया और तब भी मैं अपने आप को बुद्धिमान समझू। जो परम दुख का स्रोत है उसका विकास करके मैं अपने आप को बुद्धिमान समझू। मेरा अपने बारे में भी यही लक्ष्य रहा है और बच्चों के बारे में भी यही लक्ष्य है, क्योंकि मैंने कभी भी ये कोशिश ही नहीं करी कि मेरे बारे में सही बात क्या है। कोई गुरु बनाया ही नहीं, बनाया भी तो वहम में पड़ा हुआ हूं, गुरु को भी कुछ का कुछ समझ रहा हूं, अपने को भी कुछ का कुछ समझ रहा हूं। इसलिए शास्त्र में जो विज्ञान लिखा भी गुरु ने वो मेरी समझ में नहीं आता। तो यहां आज मौका मिला है इस निर्णय को ठीक प्रकार से समझ ले। वो क्या कह रहे हैं, वासना का अधिक बढ़ाना असली परम दुख है और वासना से निवृत्त होना ही असली शांति और धर्म है। मैं अपनी कामना पूर्ति के लिए मंदिर चला जाता हूं, कामना पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। वो कह रहे हैं कि वासना से निवृत्त होना ही असली शांति और धर्म है। तो मेरा भी वो पूजा वो कर्म अधर्म है या धर्म है। आगे कह रहे हैं निर्वास स्वरूप केवल एक आत्मा है, जो वासना रहित है निर्वास स्वरूप केवल एक आत्मा है। आत्मा क्या होती है, जो जिस्म में जान है वही आत्मा है, सबके जिस्म में जान है वही आत्मा है, आत्मा एक है, इसीलिए वो सर्वव्यापक है। पशु में भी वही है, वृक्ष में भी वही है, पक्षी में भी वही है, मनुष्य में भी वही है, इसीलिए वो आत्मा केवल एक है, सर्वव्यापक सत्ता है, इसलिए उसको परमेश्वर कहते हैं। हमने जो तरह तरह के ईश्वर मान रखे हैं इसलिए एक एडजेक्टिव लगा दिया क्या परम, जो वास्तव में सही रूप में ईश्वर है उसका नाम परमेश्वर क्यों कर दिया, क्योंकि सारी हमारी जो मान्यता है वो सब उस परमेश्वर के अधीन है। जैसे सारे मनुष्य संसार के उस परमेश्वर के अधीन है, उसके बिना इसके अंदर शरीर में जीवन है ही नहीं, इसीलिए हम सबका परमेश्वर एक ही है और उसी के बारे में राम की परमंत्र भी कह रहे हैं कि गुरु केवल एक, महर्षि रमण भी कह रहे हैं गुरु केवल एक है, महाजी भी लिख रहे हैं संतरा सिंह गुरु केवल एक है, और वो क्या है, शब्द रूप परमेश्वर है, जिसको हम ओम कह देते हैं, जिसको हम ब्रह्म कह देते हैं। इसी महाजी ने लिखा ओम ब्रह्म सत्यम, वही सत्य है, बाकी हर चीज परिवर्तनशील है नाशवान। तो मैं अपना नाश करना नहीं चाहता, इसलिए मुझे जन्म मिला उस ओम रूपी ब्रह्म का अनुभव करने के लिए, अपनी देह में ही जानने के लिए। एक सेकंड के लिए भी मैं यानी जीव यानी बुद्धि उस ईश्वर से अलग नहीं होती, हो ही नहीं सकती। जीव यदि ईश्वर से अलग हो गया तो चेतना तो ईश्वर की है, जीव की नहीं है। ईश्वर के कारण जीव के अंदर चेतना है, तो जीव तो खत्म हो जाएगा, बुद्धि तो खत्म हो जाएगी, शरीर तो डेड मैटर रह जाएगा। इसीलिए विकास किसका करना है? मैंने अपना अर्थात बुद्धि का करना है, यानी जीव का करना है, जिसमें चेतना है। जिसमें चेतना है वही सुख अनुभव करता है, वही दुख अनुभव करता है। तो इस बुद्धि का विकास तभी संभव है जब इस बुद्धि का जो अज्ञान है वो दूर हो। अज्ञान क्या है? कि संसार की वस्तुएं, संसार के भोग विलास में बढ़ाकर अपने बच्चों को सुखी कर दूंगा, मैं भी सुखी हो जाऊंगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। जबकि ये 100% गलत बात है। तेरा जीवन, तेरे बच्चों का जीवन पूरी तरह से विफल हो जाएगा यदि तूने विकास का ये मॉडल अपने जीवन में धारण किया तो। इसीलिए वो कहते हैं कि ऐसा निर्णय विचार करके अपने जीवन के जो सही रक्षक बनना चाहते हैं वे इस वासना की निवृत्ति का यत्न करें। मनुष्य जन्म वासना की निवृत्ति करने के लिए मिला है, वासना की पूर्ति के लिए नहीं मिला है। वे इस वासना की निवृत्ति का यत्न करें और आत्म परायणता में दृढ़ता धारण करें, क्योंकि आत्मा अंदर ही है। इसीलिए वो मेरा निज माँ है, मेरा निज पिता है, मेरा रक्षक, मुझको ज्ञान देने वाला है, मुझको होश में रखने वाला है। उस प्रभु के परायण मैंने होना है। अर्थात जैसे कि मैं जब संसार का विकास करता हूं तो किसके परायण होता हूं? बुद्धि के परायण नहीं होता, मन के परायण होता हूं। तो हजारों तरह की डिजायर्स मन के अंदर पलती हैं, उनके संस्कार, जितनी हम डिजायर पूरी करते हैं उसके संस्कार मन में छूट जाते हैं, फिर उन संस्कारों से संकल्प उदय होते हैं और वो इच्छा के रूप में बुद्धि के सामने आते हैं। अब बुद्धि का अभ्यास यही है, इच्छा पूरी होगी तो सुख मिलेगा, तो बुद्धि उसमें से एक सिलेक्ट कर लेती है जो बुद्धि की कैपेसिटी और उस इच्छा को पूरी करने के लिए लग जाती है। इसलिए वो ये जानती है कि इच्छा बच्चों की पूरी होगी वो भी सुखी हो जाएंगे, इच्छा मेरी पूरी हुई तो मैं भी सुखी हो जाऊं। उसको पता ही नहीं यही तो तेरे भटकने का रास्ता है, यही तो तेरे पतन का मार्ग है। इसलिए ना बच्चों को मैं ठीक से पालन कर पाता हूं, ना अपना ठीक से पालन कर पाता हूं, भटका हुआ संसार से विदा। यहां वो कह रहे हैं जो अपने जीवन के सही रक्षक बनना चाहते हैं वे इस वासना की निवृत्ति का यत्न करें। देखिए है बिल्कुल मानव जन्म उल्टा, इसीलिए इसको मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ कहा गया, क्योंकि ये बुद्धि केवल मनुष्य में होती है, पशु में भी नहीं होती। कितना भी श्रेष्ठ पशु हो, कहते हैं गाय बड़े श्रेष्ठ पशु है, मोर बड़ा श्रेष्ठ पक्षी है, लेकिन ये बुद्धि तो नहीं है उसके अंदर। तो श्रेष्ठता मनुष्य की बुद्धि के कारण है। कब? जब बुद्धि सत बुद्धि में बदल जाए, बुद्धि के अंदर ये निश्चय आ जाए, पक्का निश्चय आ जाए, पक्का विश्वास आ जाए कि प्रभु मेरे रक्षक हैं, प्रभु निरंतर मेरे संग हैं, प्रभु के बिना मेरा अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए जब ये बुद्धि शास्त्रों के अनुसार, सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के अनुसार ये निर्णय नहीं करती और संसार में भटकती रहती है, तब इससे मनुष्य जन्म छीन लिया जाता है, इसको पशु योनि में, पक्षी की योनि में भेज दिया जाता है। कारण ये है उसका। तो मनुष्य जन्म भी गया, सुख शांति भी गई। इसलिए जो सर्वश्रेष्ठ कर्म था मेरा, कौन समझाएगा मुझे? आपके माता पिता समझाएंगे आपको? आज तक समझाया क्या उन्होंने? ये समाज सिखाएगा आपको? सब तो भवन फंसा पड़े, सारी दुनिया नहीं में फंसी पड़ी। इसीलिए ये बात मैंने गुरु से सीखनी है, ये बात मैंने शास्त्र से सीखनी है, ये बात मैंने सत्संगत से सीखनी है। वो संगत जो सतमार्ग पर चलती है, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलती है, वो संगत नहीं जो भोग विलास इकट्ठे कर लेती है। भोग को भोगना ही कहते हैं, हमारी संगत की बड़ी प्रगति हो रही है। संगत की प्रगति सत्विचार की प्रगति ही कहलाती है। यदि सत्विचार की प्रगति वहां नहीं हो रही तो काहे के संगत हो? वो संसारी संगत, सत्संगत नहीं है वो। इसलिए बड़े भाग्य से ऐसी संगत मिलती है जहां शास्त्र का मर्म हमको सिखाया जाता है, और ये बुद्धि को जागृत करने का मौका हमको मिलता है। कहते हैं वे इस वासना की निवृत्ति के यत्न करें और आत्म प्रायता में दृढ़ता धारण करें, यह ही निश्चय असली कल्याण के देने वाला है। इसमें है मेरा कल्याण, मेरे परिवार का कल्याण, मेरे देश का कल्याण। तो चाहे मैं एक व्यक्ति को इस मार्ग पर लगाने में सफल हो जाऊं, चाहे मैं केवल अपने आप को ही इसमें लगाने में सफल हो जाऊं, ये कल्याण का मार्ग मैंने अपना लिया। अब कम से कम प्रभु मेरे मनुष्य जन को मुझसे नहीं छीनेंगे। क्यों नहीं छीनेंगे? क्योंकि मैंने इस मार्ग की आवश्यकता महसूस कर ली और इसमें मैंने अपनी शक्ति को लगाया है, गुरु की बात मानी है, शास्त्र की बात मानी है। तो मेरा चाहे थोड़ा सा प्रयास ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन वो मेरे संस्कारों में शामिल हो जाता है और वो इच्छा लेकर मैं संसार से विदा होता हूँ कि प्रभु बड़ी लेट बात समझ में आई, लेकिन जब से समझ में आई है मैंने कोई इसमें लापरवाही नहीं की है, मैंने पूरी कोशिश करके इसको सीखने की, जानने की, अपनाने की कोशिश की है। तो प्रभु तेरी इस मेहनत को बेकार नहीं जान ली, नया जन्म तुझको मनुष्य का ही मिलता है, क्योंकि ये काम तो मनुष्य जन्म ही होगा। और पुनर्जन्म का सिद्धांत है कि जिस वासना को लेकर, जिस कामना को लेकर जीव संसार से विदा होता है वो अगले जन्म में वो जरूर पूरी होती है। तो मैं इस कामना को लेकर संसार से जाऊं जिससे मेरे जीवन की रक्षा है, जिससे मेरा जीवन का कल्याण है, तब जाकर मैं सही सत्संग सुनने वाला बनूंगा, सही शास्त्र समझने वाला बनूंगा, मानव जन्म को सफल करूंगा। ओ धन्य।